نظام. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قومي يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ہم سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھتے ہیں اس کلاس کے اندر، جو پیر کی شام کو ہوا کرتی ہے مردوں میں، اور اس میں خواتین کو بھی ہم انوائٹ کر لیتے ہیں جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی اس کلاس میں آن لائن شامل ہو جاتی ہیں. تو اس کلاس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہو گیا، اب جو ہے وہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیات نمبر 20 سے لے کر کے 26 تک کے معارف و مسائل پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ہم جہاں تک آخری دفعہ پہنچے تھے آخری کلاس میں، یعنی پچھلے پیر کو، تو وہاں سے آگے شروع کرنے کے لیے تھوڑا سا ظاہر بیک گراؤنڈ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یعنی بنی اسرائیل سے یہ بات کہی کہ تم لوگ اس مقدس زمین میں داخل ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طے کر دی ہے، تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ نہ پھیرو. ٹھیک ہے، یعنی تم انکار نہ کرو اللہ کے اس حکم سے، کیونکہ میں تم تک اللہ کا حکم ہی پہنچا رہا ہوں کہ بھئی تم لوگ داخل ہو جاؤ زمین کے اندر. اگر تم نے پیٹھ پھیری تو بھئی یہ اللہ کا حکم تھا، یہ کوئی نعوذ باللہ کسی بچے کا حکم تو نہیں تھا، یہ کسی جو ہے وہ ایسی بیکار قسم کے انسان کا تو حکم نہیں تھا کہ اگر اس کو تم نہیں مانو گے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم توڑو گے تو کیا ہوگا؟ پتن قلبو خاسرین، کہ تم لوگ نا نقصان میں پڑ جاؤ گے. تو پھر اس کے بعد ان لوگوں کا جو جواب تھا تو وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو حضرت مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ اپنی معارف القرآن کے صفحہ نمبر 100 کے اوپر اس واقعے کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 12 سردار امالقہ کی قید سے رہا ہو کر اپنی قوم کے پاس مقام اریحا پہنچے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو 12 نقیب بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے اوپر بنائے گئے تھے، تو وہ 12 نقیب جو ہے نا وہ جاسوسی کرنے کے لیے ارض مقدس کی طرف بھیجے تھے. تو وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک جو تھا نا فرد امالقہ کا، وہ باہر نکلا ہوا تھا، اس نے ان کو دیکھا تو کسی بھی وجہ سے وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ تو یہاں پر اس چکر میں آئے ہیں. تو اس اکیلے نے ہی ان 12 سرداروں کو گرفتار کر لیا اور لے کر کے اپنے سرداروں کے پاس گیا، اپنے بادشاہ کے پاس گیا. تو وہاں پہ طے ہوا کہ بھئی ان کو جو ہے نا وہ ہم واپس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ ہماری شان و شوکت اور ہماری جو جو ملٹری سٹرنتھ ہے، ہماری بلکہ اپنی جو پرسنل سٹرنتھ ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں گے اپنی قوم کو تو وہ جرت ہی نہیں کریں گے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی. تو یہ 12 سردار پھر جب واپس آئے نا تو انہوں نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی ناقابل قیاس یعنی انتھنکیبل شان و شوکت کا ذکر کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی فرق نہیں پڑا اس سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ کی شان و شوکت تو ان کی شان و شوکت سے بہت زیادہ ہے، یہ ان کی کیا حیثیت اللہ کی شان و شوکت کے مقابلے میں. تو موسیٰ علیہ السلام پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ان کا چونکہ مسئلہ ذرا کمزور لوگ تھے، ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ تم اپنی قوم کے لوگوں کو مت بتانا ان امالقہ کی شان و شوکت کے بارے میں. مگر ہوا یہ کہ मगर क्या हुआ, हुआ ये कि इनमें से हर एक ने अपने अपने दोस्तों से खुफिया तौर पर इसका तज़किरा कर दिया। सिर्फ दो आदमी, जिनमें से एक का नाम यूशा बिन नून था और दूसरे का कालिब बिन यूकन्ना था, उन्होंने मूसवी हिदायत पर अमल करते हुए इस राज को किसी पर जाहिर नहीं किया। ठीक है, तो आगे हजरत ने लिखा है कि और जाहिर है कि 12 में से जब 10 ने राज फाश कर दिया तो फिर इसका फैल जाना कुदरती अमर था, है ना। फिर ये तो फिर एक टॉक ऑफ द टाउन बन गई ना, तो ये फैल गई खबर। तो बनी इसराइल में जब इन हालात की खबरें शाया होने लगी तो लगे रोने पीटने और कहने लगे कि इससे तो अच्छा यही था कि कौम फिरौन की तरह हम भी गर्क दरिया हो जाते, नहीं? यहां पे आकर के मरवाने की बजाय वहीं मरवा देते। इसी तरह की बातें करते हैं ना, जैसे आमतौर पे जाहिल औरतें जिस तरह की बातें करती हैं तो जो मर्द भी औरतों की तरह बन जाते हैं तो वो भी जाहिल औरतों की तरह से बातें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मरवाने की बजाय वहीं मरवा देते तो अच्छा था। ठीक है, इस तरह की बात है। तो वहां से बचाकर हमें यहां मरवाया जा रहा है। इन्हीं हालात में बनी इसराइल ने ये अल्फाज कहे कि या मूसा इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिन्हा, यानी ए मूसा इस शहर में तो बड़ी जबरदस्त कौम आबाद है जिसका मुकाबला हमसे नहीं हो सकता, इसलिए जब तक वो लोग आबाद हैं मौजूद हैं हम वहां जाने का नाम नहीं लेंगे। अगली आयत में है कि दो शख्स जो डरने वाले थे और जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया था, उन्होंने बनी इसराइल की ये गुफ्तगू सुनकर बतौर नसीहत उनको कहा कि तुम पहले ही क्यों डरे मरते हो, जरा कदम उठाकर शहर बैतुल मुकद्दस के दरवाजे तक तो चलो, हमें यकीन है कि तुम्हारा इतना ही अमल तुम्हारी फतह का सबब बन जाएगा। ठीक है, यानी हुक्म पे अमल तो करो ना, फिर तुम देखना अल्लाह की मदद आएगी। ठीक है, अल्लाह की मदद तो मशरूत है अल्लाह के हुक्म मानने के साथ, तो हम हुक्म तो मान ही नहीं रहे तो अल्लाह की मदद क्यों आएगी। बल्कि भाई कंडीशन तो यही होती है ना, कंप्यूटर साइंटिस्ट बैठे हुए माशाल्लाह बहुत सारे, इफ देन एल्स लूप होता है। हम सी प्रोग्रामिंग किया करते थे, पैस्कैल प्रोग्रामिंग किया करते थे, आजकल जो है वो बहुत सारे बच्चे भी बड़े भी पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं, तो पाइथन के अंदर क्या इफ देन एल्स का लूप नहीं होता। ठीक है, तो भाई इफ के बाद जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी तो फिर देन के अंदर वो दाखिल होगा ना। तुम इफ की कंडीशन को ही पूरा नहीं करना चाहते तो फिर देन के लूप के अंदर वो क्यों दाखिल होगा, फिर तो वो एल्स के लूप में दाखिल होगा। और एल्स का लूप क्या है, फतन कलिबू खासिरीन, कि तुम तो खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। ठीक है, तो लेकिन बात समझ में नहीं आती। ठीक है, तो वो इनके समझ में नहीं आई तो इन्होंने कहा भी कि भाई तुम्हारा इतना ही अमल तुम्हारी फतह का सबब बन जाएगा, और दरवाजा बैतुल मुकद्दस दरवाजे बैतुल मुकद्दस में दाखिल होते ही तुम गालिब हो जाओगे और दुश्मन शिकस्त खाकर भाग जाएगा। क्यों? इसलिए कि मेरे अल्लाह ने ये कहा है। ये दो शख्स जिनका इस आयत में जिक्र है, अक्सर मुफस्सरीन के नजदीक वो ही 12 में से दो सरदार हैं जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिदायत पर अमल पैरा होकर अमालिका का पूरा हाल बनी इसराइल को नहीं बताया था। ठीक है, यानी यूशा बिन नून और गालिब बिन यूकन्ना, यानी इन दोनों ने ना उस वक्त जो है वो हुक्म की खिलाफ वर्जी करी। ठीक है, उन्होंने हुक्म की यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको इनको क्या कहा था कि भाई मत बताना। ठीक है, लेकिन इन्होंने बाकी लोगों ने बता दिया, इन्होंने नहीं बताया, तो उस वक्त भी इन्होंने हुक्म पे अमल किया मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर। ठीक है, और जब उन्होंने उस वक्त हुक्म पर अमल किया तो अब जो है वो इनको उसकी जजा मिली, मजीद तौफीक मिली, मजीद तौफीक मिली कि अब दूसरों को भी जो है ना ये हुक्म पर अमल करने की तलकीन कर रही हैं। इनके अंदर अल्लाह ताला ने यकीन को बढ़ा दिया। भाई देखिए, ये जो इमीडिएटली आफ्टर ये वाला स्टेप इन्होंने लिया है कि ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कि इन्होंने देखा है, इतना यकीन था इनको, तो ये यकीन कहाँ से आया, अल्लाह की तरफ से मिला ना। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इनको जो यकीन दिया ये उनके उस अमल की जजा थी जो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बात मान करके किया था। बात जब मानते हैं तो अल्लाह ताला इस दुनिया में ही जजा देते हैं, इस दुनिया के अंदर ही जजा देते हैं। लेकिन ये दुनिया की जजा जो होती है ये उमूमी तौर पर कोई मालो दौलत की फरावानी की शक्ल में नहीं होती, ये उमूमी तौर पर कोई जो है वो आपको दुनियावी लज्जतों की शक्ल में नहीं होती, बल्कि ये तौफीक की शक्ल में होती है, तौफीक। ठीक है, ये 100% ही वाली जजा मिलती है, तौफीक वाली जजा 100% मिलती है। मालो दौलत वाली जजा ये कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, और मिलती भी है अगर जिसको मिलती भी है तो उसको भी थोड़ा सा टाइम लेकर के मिलती है, यानी एकदम से तो नहीं आपको खदाना हाथ आ जाता, उम्मीद तौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके मालो दौलत के अंदर भी अल्लाह ताला बरकत दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो जजा और सजा का मामला है ना, ये इस दुनिया के अंदर ही होना शुरू हो जाता है, आखिरत का इंतजार नहीं होता इसके लिए। इसी वजह से हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ये शेर अक्सर पढ़ा करते थे इस किस्म के बयानात के अंदर, के क्या है वो, जिंदगी खुद भी जजा, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। अदलो इंसाफ फकत हशर पर मौकूफ नहीं, अदलो इंसाफ फकत हशर पर मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती। तो सिर्फ गुनाहों की सजा नहीं देती बल्कि नेकियों की जजा इस जिंदगी के अंदर भी मिलती, और वो तौफीक की शक्ल में मिलती है। तो इन लोगों को तौफीक मिली, ठीक है, कि इन्होंने फिर आगे भी मजीद लोगों को दीन की मेहनत करी, दीन दीन के ऊपर लाने की मेहनत करी, और इनको यकीन अल्लाह ताला ने अता फरमाया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई सवाल, किसी को कोई कमेंट है तो आप लिख करके पूछिएगा या बता दीजिएगा। आगे फरमाते हैं कि कुरान करीम ने इस जगह इन दोनों बुजुर्गों की दो सिफतें खास तौर पर जिक्र फरमाई हैं। एक अल्लजीना यखाफून, यानी ये लोग जो डरते हैं, अल्लजीना वो लोग जो डरते हैं, इसमें ये जिक्र नहीं फरमाया कि किससे डरते हैं, ये वो लोग जो डरते हैं, यानी नाउज बिल्ला अगर हम उर्दू जुबान में ये बात कहते तो नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला ये कहते, ये वो लोग जो कि डरपोक थे, डरपोक, ये डरपोक का लफ्ज होता है लेकिन वो नेगेटिव कॉनोटेशन है, यहां पर तो अल्लाह के वलियों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये लोग जो डरते हैं, तो अब जब वली की बात हो रही है तो इसको हम डरपोक से ट्रांसलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है वो बुरे लोगों का नहीं है, गुनाहगार लोगों का नहीं है, अगर उनका कॉन्टेक्स्ट होता तो हम डरपोक से उसको ट्रांसलेट करते, या हजरत शेख जो है वो डरपोक से उसको ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट चूंकि औलिया अल्लाह और अंबिया का है, क्योंकि ये लोग भी बाद में जाकर फिर नबी बने थे, तो इस वजह से डरपोक से ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। सो कॉन्टेक्स्ट इज दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो फरमाते हैं कि इशारा इस बात की तरफ है, यानी इसमें यह जिक्र नहीं फरमाया कि किससे डरते हैं, तो इशारा इस बात की तरफ है कि डरने के लायक सारे आलम में सिर्फ एक ही जात है, यानी अल्लाह जल्ला शानहू, क्योंकि सारी कायनात उसी के कब्जे कुदरत है। ठीक है, अगेन इशारा तो अल्लाह की जात की तरफ है, महजूफ लफ्ज छोड़ दिया, लफ्ज अल्लाह जो है, यखाफून अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह के लफ्ज को यहां पर महजूफ कर दिया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि यहां पर महजूफ यानी हिडन लफ्ज कौन सा है, अल्लाह। ठीक है, क्योंकि यहां पर नबियों और औलिया की बात हो रही है, अल्लज़ीना यखाफून अल्लाह, ठीक है, इसको तफसीर कहते हैं विद द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट के बगैर तर्जुमा करें, भाई तर्जुमा वर्ड बाय वर्ड करोगे तो बगैर कॉन्टेक्स्ट के फिर अपनी तरफ से तफसीर बनाओगे या शैतान तफसीर बनवाएगा हमारे जहन के अंदर। ठीक है, तो अल्लाह जल्ला शानहू, क्योंकि सारी कायनात उसी के कब्जे कुदरत में है, और अल्लाह का वली जो है वो अल्लाह ही से डरता है, किसी और चीज से नहीं डरता, उसकी मशीयत और इज्जत के बगैर कोई ना किसी को अदना नफा पहुंचा सकता है ना अदना नुकसान, और जब डरने के लायक एक ही जात है और वो मुतायन है, प्री डिटर्मिंड, तय शुदा है वो जात, तो फिर उसके तायुन की जरूरत ही नहीं रही। ठीक ठीक है, तो यहां पर तआय्युन की जरूरत जो है वो रही नहीं, अल्लाह ताला ने यहां पर एक लफ्ज अपने कुरान में से गोया के बचा लिया अपना ही नाम। ठीक है, तो कुरान जो है वैसे भी कंसाइज किताब है, ठीक है, तो उसमें कम से कम अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं अल्लाह ताला, जिसकी जरूरत थी वो इस्तेमाल किया, जिसकी जरूरत नहीं थी वो इस्तेमाल नहीं किया, ये अल्लाह ताला की हिकमत है। तो अल्लाह की जात डरने के काबिल और कोई नहीं, और जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें दुआ भी सिखलाई है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवा समीउल अलीम। ठीक है, मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम से, अल्लज़ी जो ला यज़ुर्रु नहीं नुकसान पहुंचा सकती उसके इसम के साथ कोई भी चीज, चाहे वो जमीन में हो चाहे वो आसमान में हो, और वही सब कुछ सुनने वाला और वही सब कुछ जानने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सुबह को जो इस दुआ को पढ़ लेता है तो फिर सारा दिन जो है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है और उसको कोई गजंद नहीं पहुंचता, ना उसके अपनी जात को, ना उसके मुतअल्लिकीन मालो असबाब को और घर बार को। ठीक है, एक सहाबी जो है उनको किसी ने आके इत्तला दी कि आपका घर जल रहा है, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरा घर जल ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कैसे भाई, आपने तो देखा ही नहीं, आप यहाँ बैठे बैठे कैसे करें कि आपका घर नहीं जल सकता। कहने लगे मैंने सुबह को ये दुआ पढ़ी थी और मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो ये दुआ पढ़ लेता है अब उसको नहीं होता नुकसान। तो जब जाकर के देखा तो पता चला वाकई उनका घर नहीं जल रहा था, बल्कि बराबर वाले का घर जल रहा था। वो रिपोर्ट करने वालों को गलत फहमी हो गई थी कि इनका घर है। बहरहाल, तो आगे फरमाते हैं कि दूसरी सिफत इन बुजुर्गों की कुरान करीम ने ये बतलाई कि अन्नअमल्लाहुअलैहिमा, यानी अल्लाह ताला ने उन दोनों पर इनाम फरमाया, लेकिन हुमा की जमीर लगी हुई है तो उन दोनों पर इनाम फरमाया। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि जिस शख्स में जहां कोई खूबी और भलाई है वो सब अल्लाह ताला का इनाम व अता है, वरना इन 12 सरदारों में कवाए जाहिरा हाथ पांव कान आंख और कवाए जाहिरा व बातिना और अक्लो होश और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत व मईयत, ये सारी ही चीजें सभी को हासिल थी। हम कहते रहते हैं ना सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह तक पहुंचा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, तो भाई सोहबत अल्लाह वालों की तो इनको भी हासिल थी, इन 10 सरदारों को। ठीक है, तो सोहबत अल्लाह वालों की भी हासिल थी, अक्लो शऊर भी हासिल था, आंख कान कवाए जाहिर सब कुछ हासिल थे, इसके बावजूद और सब फिसल गए और यही दो अपनी जगह जमे रहे। तो मालूम हुआ कि असल हिदायत इंसान के कवाए जाहिरा व बातिना, उसकी सही व अमल के ताबे नहीं बल्कि अल्लाह ताला का इनाम है। अलबत्ता इस इनाम के लिए सही व अमल शर्त जरूर है। ठीक है, तो अल्लाह ताला का इनाम है, तो भाई अल्लाह ताला का इनाम तो ये तो हो गई, कौन सी वाली बात जरा आप मुझे कोई बता दे, ये तो कौन सी वाली बात हो गई, अल्लाह ताला का इनाम है, कौन सी वाली बात? अगर क्लास में हाजिर जवाब हाजिर दिमाग रहते होंगे तो आप सवाल का जवाब दे सकते हो, क्योंकि पहले भी ये बात आई है क्लास के अंदर, ये कौन सी वाली बात हो गई? के जिसको अल्लाह चाहे अल्लाह ताला रखे उसे कौन चखे, जिसके ऊपर अल्लाह ताला का इनाम हो जाए तो बस वही कामयाब हो गया, तो ये कौन सी वाली बात हो गई? चले कौन सी वाली बात से, अगर आपको मेरा सवाल समझ में नहीं आ रहा तो हम ये इस तरह पूछ लेते हैं कि दीन इस्लाम के बुनियादी अकायद में से कौन सा वाला अकीदा यहां पर इन्वोक हो रहा है, दीन इस्लाम के अकायद में से कौन सा वाला अकीदा इन्वोक हो रहा है? जी, कदर, तकदीर, ठीक है ना, तकदीर की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने जिसके लिए जो फैसला कर दिया वही होगा। ठीक है ना, मोहम्मद अरबी, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए अल्लाह का फैसला कि उनके ऊपर जो है ना वो अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की वही नबूवत, खातमुन नबीयीन, ये अल्लाह ताला का फैसला। अबू जहल के लिए अल्लाह ताला का फैसला कि नहीं, इसके पास तो जहालत का एक्सट्रीम होगी, इसके ऊपर तकब्बुर और बुग्ज और जहालत और ये सारी चीजें होंगी, तो ये अल्लाह ताला का फैसला, ठीक है। तो ये तकदीर के लेवल की बात हो गई, लेकिन हम तकदीर के लेवल की बात जो है वो ईमान की हद तक तो करते हैं, आमाल की हद तक तो नहीं करते ना। ईमान की हद तक तो है तकदीर, तकदीर पर अगर कोई ईमान नहीं लाएगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब कुछ जाया उसका, सब कुछ जाया। कितने ही नमाज पढ़ी हो, कितने ही रोजे रखे हो, कितने ही सदकात करे हो, कितने ही जिहाद किया हो, कितने ही हज किए हो, अगर तकदीर पर ईमान नहीं है इसका तो जीरो, एवरीथिंग इज जीरो, ठीक है ना। तो तकदीर पर ईमान, ये शर्त है ईमान की, ठीक है। लेकिन क्या आप जो है वो नमाज पढ़ने के बारे में कहते हैं कि जी तकदीर में होगा तो मैं पढ़ लूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तकदीर में होगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा, क्या ख्याल है? फिर आपकी नमाज हो जाएगी इस तरह से, तकदीर पर ईमान लाने से आपकी नमाज हो जाएगी? या ये कि इससे आगे बढ़ जाते हैं कि भाई तकदीर में होगा तो पेट में खाना चला जाएगा खुद ही से, वरना मैं भूखा रह जाऊंगा। अगर मेरी तकदीर में खाना मुंह में जाना होगा तो खा लूंगा, और नहीं तो भूखा रह जाऊंगा, है ना भाई। और अगर तकदीर में हुआ कि मुझे गाड़ी ने टक्कर मारनी है सड़क पर, तो गाड़ी मुझे टक्कर मार देगी, वरना जो है मैं खड़ा रहूंगा, कोई गाड़ी मुझे टक्कर नहीं मारेगी, क्या ख्याल है? तकदीर चलती है इधर, तकदीर पर ईमान ना तो खाने के टेबल पे चलता है, ना तो सड़क पे चलता है, और ना तो मुसल्ले पे चलता है, ठीक है ना। तो तकदीर की बुनियाद पर आमाल तो नहीं होते ना, ठीक है ना। तो अब अमल की बात करते हैं हम, जो कि हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी जुमले में करी है, अमल की बात, कि इस इनाम के लिए सही व अमल शर्त जरूर है, ठीक है जी। कि भाई वो फिसल गए और ये ना फिसले, तो कौन सा वो, कौन सी वो सही थी, कौन सा वो अमल था जो कि इन्होंने किया उन्होंने नहीं किया। अब हम तकदीर की बात नहीं कर रहे, अब हम, बात समझ में आ रही है? आर यू विथ मी? हम अब तकदीर की बात नहीं कर रहे कि अल्लाह का इनाम हुआ इनके ऊपर, बेशक अल्लाह का इनाम हुआ, वो तो अपने आप को जो है ना वो अपने नफ्स को भूलने से बचाने के लिए हर बंदे ने यही सोचना है कि मेरा कोई कमाल नहीं है इसके अंदर, अल्लाह का कमाल है, ठीक है ना। लेकिन अब करते हैं बात, यानी इल्म, कि भाई क्या काम बंदा करता है कि जिसकी वजह से वो फिसल जाते हैं, वो फिसल गए और ये नहीं फिसले, ठीक है। हालांकि सोबत उनको भी हासिल थी, मुसलमान वो भी थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानने वाले वो भी थे, ठीक है। तो कौन सी सही, कौन सा अमल? तो उन्होंने बात मानी, वो तो चले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं कि उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने बात मान ली। तो अब हम चले आपके जवाब के ऊपर अगला सवाल करते हैं, उन्होंने क्यों बात मानी, इन्होंने क्यों नहीं बात मानी, ठीक है। इन दोनों ने क्यों बात मानी और इन 10 ने क्यों नहीं बात मानी, इसकी वजह क्या बनी? हम आपसे अब आ रहे हैं, आपको लेकर के आ रहे हैं तसव्वुफ की तरफ। कुछ लोग हैं ना माशाल्लाह तसव्वुफ, तो तसव्वुफ की बात करें। अब तसव्वुफ की दुनिया में जितना आपने सीखा है उसकी रोशनी में जवाब दें कि हाउ कम देवर एबल टू रेजिस्ट द टू, देवर एबल टू रेजिस्ट एंड द अदर 10 वर नॉट एबल टू रेजिस्ट, ठीक है। रेजिस्ट वॉट? अपने किनो, इन्होंने जो बात स्लिप कर दी, इन्होंने जो बात स्लिप कर दिया ना, खबर को स्लिप कर दिया, तो खबर जो स्लिप हो गई तो किनको स्लिप किया इन्होंने, किनको स्लिप किया इन्होंने, इन्होंने अपने कबीले वालों को स्लिप किया खबर, है ना भाई। खबर आउट कर दी, कबीले वालों को आउट कर दी, खानदान वालों को आउट कर दी, अपने भाइयों को बता दिया, अपने घर की औरतों को बता दिया, अपने जो है वो बूढ़ों थे उनको बता दिया, और उन्होंने नहीं बताया, उन दोनों ने बताया, क्यों? क्यों? इन्होंने अपने नफ्स को मार लिया था, उन्होंने अपने नफ्स को नहीं मारा जी। बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है। ये जवाब है असल, असल जवाब ये है, तसव्वुफ की रोशनी में जो जवाब है ना वो ये जवाब है, ठीक है, कि देर निस्बत विद हजरत मूसा अलैहि सलाम वॉज स्ट्रॉन्गर देन देर निस्बत विद देर पियर्स, विद देयर पीयर्स, ठीक है, इनके जो जिसको कि हम दूसरे तरह से ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करते हैं, ज्योमेट्रिकली वो कौन बताएगा ज्योमेट्रिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? और कुरान मजीद से भी इसको इंशाल्लाह आप सामने रखेंगे, ठीक है जी। ज्योमेट्रिकली वर्टिकल निस्बत, देयर वर्टिकल निस्बत वॉज स्ट्रॉन्गर देन देयर हॉरिजॉन्टल निस्बत, वर्टिकल वॉज मोर स्ट्रॉन्ग देन दे हॉरिजॉन्टल कनेक्शन, हॉरिजॉन्टल निस्बत, हॉरिजॉन्टल ताल्लुकात, ठीक है ना। ऊपर वाले से इनकी निस्बत ज्यादा मजबूत थी और बराबर वालों से इनकी निस्बत कम मजबूत थी। क्यों क्यों ये बात करी जाती है? इसलिए कि हमारा दीन हॉरिजॉन्टल निस्बत के खिलाफ नहीं है। हमारा दीन ये नहीं कहता कि तुम जो है वो अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ बिल्कुल मिलना जुलना खत्म कर दो, छोड़ दो। कुछ लोगों को तो यही बात समझ में नहीं आती, हम जब कहते हैं ना कि भाई हमारे मशाइख फरमाते हैं कि सबसे ताल्लुक तोड़ो, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, फिर उसके बाद फिर अल्लाह की निस्बत से लोगों से ताल्लुक जोड़ो, यानी पहले तोड़ो फिर अल्लाह से जोड़ो फिर अल्लाह की निस्बत से लोगों से ताल्लुक जोड़ो। तो समझ में नहीं आता ये कैसे करें भाई, इसका क्या मतलब है? तो पता नहीं क्या समझना शुरू करते हैं, समझते हैं कि जैसे शौहर को जो है ना वो बीवी को तलाक दे देनी होगी, बीवी को जो है वो शौहर से खुला ले लेनी पड़ेगी, फिर शौहर बीवी अलग अलग हो जाएंगे, ताल्लुक टूट जाएगा, फिर उसके बाद अल्लाह से ताल्लुक जोड़ेंगे, फिर उसके बाद दोबारा आके निकाह करेंगे। पता नहीं, शायद कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि तलाक दे देनी पड़ेगी शौहर बीवी को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना होता, ठीक है, बल्कि बीवी के साथ भी ताल्लुक रखना है, बीवी को शौहर के साथ भी ताल्लुक रखना है, भाई बहन के साथ भी ताल्लुक रखना है, हर एक के साथ जो जायज ताल्लुकात हैं सारे ताल्लुकात रखने हैं। ये हमारे दीन के अंदर लाजिम है, मौजूद है, ये दीन का हिस्सा ही है हमारा। लेकिन ये ताल्लुकात जो हैं वो ऊपर वालों के साथ जो ताल्लुक है उससे ज्यादा मजबूत नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई बहनों के साथ जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग ताल्लुक हो जाए कि बाप से ताल्लुक खराब हो जाए, है ना भाई, क्या ख्याल है? अगर भाई बहन मिलकर के जो है वो बाप को घर से बाहर निकाल दें तो भाई बहन का ताल्लुक जो था वो तो जायज ताल्लुक था ना, लेकिन भाई बहन के साथ ताल्लुक बाप से ताल्लुक से बढ़ गया, बाप को घर से बाहर निकाल दिया, जैसे कि ये फैमिलीज आजकल मौजूद हैं, इस तरह के वाकयात आजकल बहुत आम हैं मुसलमान पाकिस्तानी घरानों के अंदर। भाई बहन की तो बड़ी अच्छी बनती है, बाप को बाहर निकाल दिया, माँ को भी बाहर निकाल दिया घर से, घर में आने की इजाजत नहीं है। क्यों? इसलिए कि हॉरिजॉन्टल निस्बत जो कि जायज थी वो वर्टिकल से ज्यादा मजबूत हो गई, ठीक है। इसी के बारे में कुरान अजीम शान फरमाता है, अल अखिल्लाउ, क्या फरमाता है? अल अखिल्लाउ यौम इज़न बअज़ुहुम ले बअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, कि जितने दोस्त होंगे ना इस दुनिया के आपस में दोस्तियां लगाने वाले, चाहे वो दीनी निस्बत से क्यों नहीं दोस्तियां लगाने वाले हैं, दीनी निस्बत से भी जो दोस्तियां बनाते हैं ना वो भी अगर ऊपर वालों से यानी अपने मशाइख से उनका ताल्लुक कमजोर है और दीन के बहाने उनका जो आपस का ताल्लुक ज्यादा मजबूत हो गया है, वो भी इसी आयत के अंदर आएंगे। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन, कि जिस दिन दोस्त अहबाब जो होंगे ना वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, सिवाय किन के? मुत्तकीन के। मुत्तकीन की डेफिनेशन क्या है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर? मुत्तकीन की डेफिनेशन कैसे की जाएगी? वो जिनका वर्टिकल ताल्लुक, वर्टिकल निस्बत ज्यादा मजबूत। मुत्तकीन की तारीफ इन दिस कॉन्टेक्स्ट ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग, चले आप कह लें क्या तारीफ है मुत्तकीन की, कि जिनकी वर्टिकल निस्बत हॉरिजॉन्टल निस्बत से ज्यादा मजबूत है, और जिसकी हॉरिजॉन्टल निस्बत वर्टिकल निस्बत से ज्यादा मजबूत होगी वो कयामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे कयामत के दिन, ठीक है। तो इन लोगों की यही मसला था, वरना तो सोबत याफ्ता तो ये लोग भी थे।
लेकिन शैतान पीछों को थोड़ी छोड़ता, ये को थोड़ी है कि नबी की सोहबत में अगर होंगे तो अब शैतान जो है वो आप तक एक्सेस नहीं कर सकता। नहीं, शैतान का एक्सेस मस्जिद के अंदर भी है, शैतान का एक्सेस खानकाह के अंदर भी है, शैतान का एक्सेस तो हर जगह पर है, हर जगह पर है शैतान का एक्सेस। तो शैतान शेख की मजलिस में भी आकर के बाहिमी दोस्तियों को मजबूत करवाता है, फिर जो है ना फिर कोई ऐसी बदगुमानी वाली बात करवाता है आपस में शेख के खिलाफ, शेख को तनकीद की नजर से देखना शुरू हो गए, शेख की बात को जो है वो समझने की कोशिश करने के बजाय उसको अपने तौर पर महमूल कर लिया अपनी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। ये बदगुमानी करने के लिए काफी होता है, बदगुमान कर देने के लिए। और फिर जो आपस के ताल्लुकात होते हैं फिर वो इधर से पूछ रहे हैं, फिर वो उधर से पूछ रहे हैं, और उधर तो और भी आपसे ज्यादा बढ़कर के जो है वो कमजोर निस्बत वाला बंदा है, उसने आपको और भी ज्यादा बुरा मशवरा देना है। तो आपस में ना एक दूसरे के बारे में अब इतना मजबूत ताल्लुक हो जाता है, भाई जो ताल्लुक है वो ऊपर की निस्बत से ताल्लुक बनाओ ना, ऊपर की निस्बत के बगैर ताल्लुक बनाओगे, या ये कि शुरू में तो ऊपर की निस्बत से ताल्लुक बनाया है ना, भाई मजलिस में आना शुरू है तो क्यों आ रहे हैं मजलिस के अंदर, शेख साहब के साथ ताल्लुक बना था ना, तो शेख साहब के ताल्लुक की वजह से फिर मजलिस के साथियों के साथ ताल्लुक बना। लेकिन शैतान फिर क्या करता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जिन्होंने अपनी वर्टिकल निस्बत में मेहनत नहीं करी होती है ना, शैतान को नजर आ रहा होता है, शैतान को पता चल रहा होता है कि क्या कर रहा है ये, तो वो देख रहा होता है कि हाँ भाई ये वर्टिकल निस्बत के बारे में तो ये रिलैक्स हो गए हैं, हॉरिजॉन्टल निस्बत के बारे में बड़ा संजीदा हो गए हैं ये, वो कहता है बस ठीक है मैं इसी तरीके से इसका बेड़ा गर्क करवाऊंगा। अब शेख साहब ने जो है वो किसी के बारे में कुछ बता दिया, किसी के बारे में कुछ कह दिया, वो ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे, उनके साथ ज्यादा अच्छा गहरा ताल्लुक हो चुका था कल्बी, वो बदगुमान हो गए शेख के बारे में, ये शेख साहब तो ऐसी बातें करते हैं, शेख साहब तो ऐसी बातें कहते हैं, शैतान का काम हो गया। आपको क्या पता कि आपकी आजमाइश के लिए बात कही जा रही है। हमें एक वाकया याद आता है, आप में से किसी के साथ शेयर भी किया था अभी चंद दिन पहले, कि जब हम शिकागो में रहते थे ना तो वहां पर जो है वो हमारे उस्ताद साहब थे जिनसे जो है वो हमने दीन का इल्म हासिल करना शुरू किया, और अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी फरमाई, अक्सर उनका जिक्र, डॉक्टर थे वो भी, और उनके वालिद साहब भी डॉक्टर थे, कराची के थे वो, उनके वालिद साहब कराची से मूव हुए थे वहां पर, और माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टैब्लिश होकर के बड़े बहुत बड़े डॉक्टर बने वहां पर, लेकिन वो एक फैमिली फिजिशियन थे, वालिद साहब जो थे फैमिली फिजिशियन थे, तो मुझे जो है ना वो अपनी इंश्योरेंस में डॉक्टर चूज करना था कि जी मैं किस डॉक्टर को अपना प्राइमरी केयर फिजिशियन बनाऊं, ठीक है ना, प्राइमरी केयर फिजिशियन जिसके पास हर मर्ज के लिए आप प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाते हैं, फिर प्राइमरी केयर फिजिशियन या तो आपको दवा ववा दे देता है या वो आपको किसी एक्सपर्ट के पास भेज देता है, किसी स्पेशलिस्ट के पास भेज देता है। तो मुझे अपना पीसीपी चूज करना था, तो हम उस वक्त तक जो है वो मौलवियों के साथ उठना बैठना शुरू हो चुका था, तो मैंने कहा भाई कि अभी जो डॉक्टर जो है ना वो कोई दीनदार डॉक्टर होना चाहिए, कोई नेक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने सोचा कि मेरे उस्ताद जो है ना वो तो पैथोलॉजिस्ट थे, तो उनका काम जो है ना क्लिनिकल तो उनका काम ही नहीं था, वो तो बैठ करके अपना रिसर्च का काम कर रहे होते थे और अपने लैब में काम कर रहे होते थे, ठीक है, लेकिन उनके जो वालिद साहब थे तो वो एक आम से डॉक्टर थे और बड़े तजुर्बेकार थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनसे मशवरा करता हूँ जाकर के कि मुझे कौन सा डॉक्टर जो है ना वो पीसीपी बनाना चाहिए, ठीक है, तो मैं जो हूँ वो डॉक्टर अब्दुल सत्तार उनका नाम था, डॉक्टर अब्दुल सत्तार उनके पास गया, उनसे कहा कि अंकल, उनका मंकल कहते थे, ठीक है, अंकल मुझे जो है ना वो एक पीसीपी सिलेक्ट करना है, तो मैं चाहता हूं कि कोई दीनदार मुसलमान डॉक्टर हो ना, क्योंकि अमेरिका में थे ना, तो मैंने कहा दीनदार मुसलमान डॉक्टर शिकागो में तो होते थे, तो किसी ऐसे डॉक्टर का नाम बताएं कि जो कि बहुत नेक हो, जो कि नेक हो, तो डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब ने ना मुस्कुराते हुए, उनके बड़े एक खास मुस्कुराहट होती थी, कराची की मेमन फैमिली से उनका ताल्लुक था, तो बड़ी प्यारी मुस्कुराहट से उन्होंने जवाब दिया कि कोई डॉक्टर नेक नहीं होता, क्या जवाब दिया, कोई डॉक्टर नेक नहीं होता, तो मैं अजीब सा, यानी कहते ना वो तजबजब होकर के रह गया कि क्या फरमा रहे हैं ये कि कोई डॉक्टर नेक नहीं होता, तो मुझे नेक डॉक्टर कैसे मिलेगा, तो मैंने फौरन से उनको जवाब दिया आपके बेटे, वैसे तो मुझे कहना चाहिए था कि आप माशाल्लाह खुद ही इतने नेक हैं, क्योंकि माशाल्लाह लंबी सी दाढ़ी थी, नमाज रोजा सब कुछ करते थे,
तो मैंने कहा कि आपके बेटे भी तो माशाल्लाह डॉक्टर ही हैं, वो तो माशाल्लाह शेख भी हैं, आलिम भी हैं, और मैं तो खुद उनका स्टूडेंट हूं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर नेक नहीं होता? डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब ने ना मुझे बड़ा मजे का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो तो तुम मुझसे पूछो ना, मैं बाप हूं। क्या फरमाया उन्होंने कि मेरा बेटा जिसको तुम बहुत नेक कह रहे हो ना, मुझसे पूछो कि वो वाकई नेक है कि नहीं है, क्योंकि मैं बाप हूं ना। उन्होंने मुस्कुराते हुए बात कही, ठीक है। तो फिर मैंने आगे से डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब से कहा कि ऐसा करते हैं डॉक्टर साहब, अंकल ऐसा करते हैं कि मैं आपको ही अपना पीसीबी बना लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो मैंने फिर उनको अपना पीसीबी बना लिया। तो ये वाकया आपको क्यों सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं कि भाई आपस में जो पियर्स होते हैं ना, उनको नहीं पता होता चीजें, लेकिन जो बाप होता है, चाहे वो रूहानी बाप क्यों ना हो, चाहे वो जिस्मानी बाप हो, चाहे रूहानी बाप हो, उसको बिग पिक्चर नजर आ रही होती है ना, उसको नजर आ रहा होता है ना कि भाई कौन स्टूडेंट कैसा है, कौन बेटा कैसा है, कौन बेटी कैसी है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, तो वो उसके हिसाब से काम करता है। अब जो है वो यारी दोस्ती के अंदर तो भाई हर कोई अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता कि भाई बुराई क्या है मेरे दोस्तों के अंदर। जिसको दोस्त बना लिया, अब उसकी बुराई किधर से नजर आएगी, उसकी गलती को कोई कमी कोताही कैसे नजर आएगी? वो तो बाप को नजर आएगी ना, वो तो शेख को नजर आएगी ना, लेकिन शैतान जो है वो अंधा कर देता है इस मामले से, इस मामले में उल्लू बना लेता है शैतान, अपनी अकल के ऊपर बड़ा भरोसा। ठीक है, तो इस तरह से हमने बड़े देखे हमारे अपने हजरत पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के साथ कितने लोगों ने ये हरकत करी, कितने लोगों ने ये हरकत करी कि हॉरिजॉन्टल निस्बत ज्यादा मजबूत बना ली, वर्टिकल निस्बत कमजोर पड़ गई, और बिल आखिर शैतान ने उनको शेख से बदगुमान करके अलग करवा दिया। कैसे अलग करवा दिया? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, वरना एक से एक सलाहियतों वाले वो लोग थे, एक से एक जहीन वो लोग थे, एक से एक इन वाले वो लोग थे, एक से एक कुर्बानियां देने वाले वो लोग थे, एक से एक मेहनत करने वाले लोग थे, लंबे लंबे मुराकबे करने वाले वो लोग थे, और बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो एक्टिविटीज कर, दीनी एक्टिविटीज करने वाले वो लोग थे, कैसे हजरत से बदगुमान होकर के अलग हो गए? सिर्फ इसी वजह से, हॉरिजॉन्टल निस्बत की वजह से। सिर्फ हॉरिजॉन्टल निस्बत को वर्टिकल से ज्यादा मजबूत बनाने की वजह से बदगुमान करवा दिया शेख, आगे से पलट के पूछा भी नहीं, पलट के शेख से बात भी नहीं करी कि भाई मुझे लोग ऐसी बातें आपके बारे में बता रहे हैं, इसके अंदर क्या हकीकत है, क्या है, मुझे आप मुझे समझा दीजिए, आप मुझे बता दीजिए। नहीं, पूछने ही नहीं आए, क्लियर करने ही नहीं आए हजरत के पास, खुद ही से फैसला करके अलग हो गए, और बल्कि दुनिया जहां के अंदर जो है वो ढंडोरा पीटना शुरू हो गए। हजरत के तो मुकामात को अल्लाह ताला ने बुलंद किया, इसके बहाने आजमाइशें थी, अल्लाह वालों के ऊपर आजमाइशें आती हैं, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर नहीं आई थी क्या? तो आज के किसी शेख के ऊपर क्यों नहीं आएगी? लेकिन जिन्होंने ये हरकत करी वो तो गए ना फिर उसके बाद, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, प्लेन ज्योमेट्री से भी ये समझ में आ सकता है, सिवाय उसके कि जिसको शैतान जो है वो अपने नरगे में ले ले। ठीक है, तो इसको याद रखना चाहिए, अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव इल्ला मुत्तकीन। और इस कॉन्टेक्स्ट में मुत्तकीन का मतलब कि जिसकी वर्टिकल निस्बत हॉरिजॉन्टल निस्बत के मुकाबले में ज्यादा मजबूत हो। ठीक है जी, कोई सवाल है किसी को, कोई इश्काल है किसी को, लाइए लेकर के अपना सवाल। नहीं लेकर के आएंगे तो उधर बैठा हुआ है शैतान को अपना काम करने के लिए। तो आगे फरमाते हैं कि इससे मालूम हुआ कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने अक्ल होश और दानाई व होशियारी अता फरमाई हो, वो अपनी इन ताकतों पर नाज ना करे, बल्कि अल्लाह ताला ही से रुश्द व हिदायत तलब करे। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह ने खूब फरमाया है, फहम खातर तेज करदा नीस तरह जुज शिकस्ता मह नगीरो फजल शाह। ठीक है, मुझे नहीं आती फारसी, मैं उसका तर्जुमा देख नहीं पाया इस वजह से, बाद में कभी मौका मिलेगा तो अगर कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये थियोरेटिकल चीजें तो हमने कुछ पढ़ ली है, सुन ली है कि नफ्स को हलाक करना, लेकिन नफ्स को हलाक करना जो है ना उसका एक तरतीब होती है, उसका एक रास्ता होता है, तरीका होता है। ये ऐसा नहीं है कि गोली से जो है वो बंदूक से गोली मारी और नफ्स हलाक हो गया, ऐसे नहीं होता नफ्स हलाक। ठीक है, तो निस्बत की जो है ना ये इन बातों को समझना जरूरी है। इसी वजह से रहे सलामत तुम्हारी निस्बत कि बस मेरा आसरा यही है, ऐसे जब सालिक की सोच बनती है ना तब उसकी निस्बत की हिफाजत होती है, और फिर वो उसके लिए इल्म हासिल करता है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत किताब से, बहुत काफी शाफी हजरत ने उसके अंदर इस बात को समझाया। अल्लाह ताला पढ़ने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे फरमाते हैं, खुलासा कलाम यह है कि इन दोनों बुजुर्गों ने अपनी बरादरी को एक नसीहत फरमाई कि अमालका के जाहिरी कुव्वत और शौकत से ना घबराएं, अल्लाह पर तवक्कुल करके बैतुल मुकद्दस के दरवाजे तक चले चलें तो फतह और गलबा उनका है। लेकिन भाई आगे आखिर को अल्लाह है भाई, तो फतह और गलबा अल्लाह ने नहीं देना तो और किसने देना है तुम्हें। इन बुजुर्गों का यह फैसला कि दरवाजे तक पहुंचने के बाद उनको गलबा जरूर हासिल हो जाएगा और दुश्मन शिकस्त खाकर भाग जाएगा, हो सकता है कि कौम अमालका के जायजा लेने की बिना पर हो कि वो लोग बड़े डेल डोल और ताकत और शौकत के बावजूद दिल के बड़े कच्चे होते ना। मैं तो बड़ा मोटा ताजा लेकिन डरपोक किस्म का इंसान, अब यहाँ पे डरपोक का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है वो कौम अमालका का है। जब हमले की खबर पाएंगे तो ठहर नहीं सकेंगे, हो सकता है उनको ये ऑब्जर्वेशन हो गई हो, और ये भी मुमकिन है कि फरमान इलाही जो बतौर बशारत बशारत फतह मूसा अलैहिस्सलाम से सुन चुके थे, इस पर यकीन कामिल होने की वजह से ये फरमाया। ठीक है, हाउ डू वी, इन्होंने कुछ लिखा है कि हाउ डू वी एसेस वेदर वर्टिकल इज स्ट्रॉन्गर और हॉरिजॉन्टल, वी थिंक आवर वर्टिकल नस्बत इज स्ट्रॉन्गर एनी हाउ। ये तो जब आजमाइश आती है तब पता चलता है ना, ये थिंक और गुमान से तो कुछ नहीं होता ना, अजम्पशन है, गुमान तो अजम्पशन है कि वी एज्यूम दैट आवर वर्टिकल निस्बत इज स्ट्रॉन्गर एनी हाउ। ठीक है ना, इट विल बी टेस्टेड, ठीक है ना, आजमाइश आती है तब पता चलता है कि है कि नहीं है। अभी तो ये देखना है हमने कि हम उसके लिए कुछ असबाब इख्तियार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अल्लाह ताला से इसकी हिफाजत की दुआ मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? हमारे दिल के अंदर इसका कोई खौफ है कि ये मेरी जो निस्बत है अपने मशायख के साथ, क्या ये निस्बत मरते वक्त तक कायम रहेगी भी कि नहीं रहेगी, क्या इसकी कोई फिक्र है हमारे दिल के अंदर? पहली बात तो फिक्र, और जाहिर है फिक्र होगी तो दुआ भी मांगेंगे अल्लाह ताला से, रोएंगे भी अल्लाह ताला के सामने इसकी हिफाजत के लिए। और दूसरी चीज क्या होती है दुआ के बाद, दवा। दवा क्या होती है कि क्या असबाब इख्तियार कर रहे हैं आप इसके लिए, क्या असबाब इख्तियार कर रहे हैं, या अपने दोस्तियों यारियों के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो बढ़ते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इसकी हिफाजत के असबाब इख्तियार नहीं कर रहे। शेख के साथ नस्बत को मजबूत बनाने के लिए क्या किया आपने, अपनी मनमर्जी के हदिये दे दिए हैं, इससे शेख की नस्बत मजबूत नहीं होती है, समझे? अपनी मनमर्जी के हदिये देने से शेख के साथ नस्बत मजबूत नहीं होती है, क्या समझ में आई बात? ठीक है जी, आगे कोई और भी मैसेज आया है। कैन वी से दैट एन आइडेंटिफाई दैट एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वंस हॉरिजॉन्टल नस्बत बीइंग स्ट्रॉन्गर देन द वर्टिकल नस्बत इज दैट ही विल बी वेलकमिंग टू एनी थॉट्स अपोजिंग द शेख। ऑफ कोर्स, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, शेख के बारे में कोई आकर के कुछ भी बोल दे ये तो फॉरन से बिकम्स पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, है ना भाई? इसका मतलब 100% यही है, बल्कि लोगों को तो मजा आता है ना डिस्कस करने के, हजरत जी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, कोई मिल गया हो जी आप बताएं असल में क्या हुआ था, आप बताएं कि जी हकीकत क्या थी, मुझ तक ये उड़ती उड़ती खबरें पहुंची हैं लेकिन इसकी हकीकत क्या थी, ये पकड़ पकड़ करके लोगों से पूछ रहे हैं। 100% इस बंदे की निस्बत जो है ना वो ऊपर की समझने कमजोर नहीं है, बल्कि है ही नहीं इसकी निस्बत ऊपर से, अगर ये एटीट्यूड है इसका, ये तो बिल्कुल ही जीरो की दलील है। कि तो हमें लगा हुआ है कि शेख की कोई खराबी जो है वो इसके सामने खुल करके आगे आ जाए, इसके तो हमें लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये आज का जो भेजा है ना, वो उसके शेर को जरा गौर से पढ़ लें, और उसके ऊपर जो आयत लिखी हुई है, या अय्युहल लजीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मे काफा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और दीन में पूरे के पूरे दाखिल होने के ऊपर बड़ा जबरदस्त ये शेर है, बयान के दौरान दिल में नहीं आया लेकिन बाद में फिर अल्लाह ने दिल में डाला, कि ये शहादत रहे उल्फ, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, क्या मतलब उदखुलू फिस्सिल्मे काफा को लोग आसान समझते हैं, नहीं, इसमें तो आजमाया जाता है, नस्बत को आजमाया जाता है। और ये सारी आजमाइश जो है ना, ये मैदान जंग में नहीं होती, खाली मैदान जंग की आजमाइश नहीं होती, ये इंटेलेक्चुअल आजमाइश होती है, ये दिल की आजमाइश होती है, ये सोच और फिक्र की आजमाइश होती है। और जो इस आजमाइश में पूरा उतरता है ना, फिर वो अल्लाह के इस हुक्म उदखुलू फिस्सिल्मे काफा को पूरा कर पाता है, वरना नहीं पूरा कर पाता। नाकिस दीन ही को कामिल समझ करके मजे की जिंदगी गुजार रहा होता है अपने जोम के अंदर, कि जी मेरा तो दीन बड़ा जबरदस्त हो गया है। उसको नहीं खशियत नसीब होती, उसको नहीं तकवा नसीब होता, उसको नहीं जुहद नसीब होता, उसको नहीं सबर और शुक्र नसीब होता, और तफवीज और रजा तो बहुत दूर की बात। अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम सब की नस्बत की मरते दम तक हिफाजत फरमाए, इस नस्बत को इस दुनिया के अंदर भी कमाल तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, और आखिरत में भी इसी नस्बत के साथ अपने मशायख के साथ उठने की तौफीक अता। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।